From the conference center.
Sunt lexa herke temple square ke se melan kendre se Yesu Masih ka girjagar antim dino ke 184th arth barsik maha sammelan hai jiske bashan karta girjagar ke maha adhikariyo aur maha pad adhikariyo me se chune gaye hai Mormon Tabernacle gayak mandali dwara is sabha ka sangeet pradan kare kiya jayega girjagar ke sadasya aur adhikariyo duniya ke sabhi bhagon se aaye hain taki apne girjagar netvon se salah aur aadesh prapt kar sake. Bonneville Distribution dwara is prasaran ko janta seva ke roop mein purti kiya gayi hai. Is karyakram ko koi abhilekhan pratilekhan ya any istemal bina likhit anant ki mana hai. Pradhan Henry B. Aaron, pradhan adhyakshta ke pehle salahkar is girjagar ke is sabha ka sanchalan karenge. Bhaiyo Beno, hum aapke swagat karte hain. Swagat karte hain Yesu Masih ke girjagar antim dino ke santon ke 184th aadarsh varshik mahasammelan ke pehle baithak mein aur khas taur par swagat karte hain un sadasyon aur doston ko sammelan kendr aur vishwa bhar se bhag le rahe hain. Pradhan Thomas S. Munson jo sammelan ke adhyaksh kar rahe hain ne kaha ki main is sabha ka sanchalan karu. Hum maha adhikari aur maha sahayak adhyakshakton ko abhar karte hain jo sammelan mein upasthit hai. इस सभा के संगीत मोमन टैबनेकल गायक मंडली द्वारा रहेंगे मैक वुलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन से जिनके साथ रिचर्ड एलियट और एंड्रू अंसवर्थ ऑर्गन पर रहेंगे गायक मंडली ने इस बैठक को शुरुआत द मॉर्निंग ब्रेक्स गाकर किया और अब हमारे लिए गाएंगे हाई ऑन द माउंटेन टॉप शुरुआत प्रार्थना फिर बहन बॉनी ऑस्कर्सन जवान महिलाओं महाप्रधान द्वारा बोला जाएगा
Mountain top.
Our beloved Heavenly
Father, हम आपके बच्चे इकट्ठा हुए हैं ये जनरल कॉन्फ्रेंस में. हम आभारी हैं कि हमें इस मौका मिला कि हम इकट्ठा हो सके और आपके सेवेंस के द्वारा हमें हम अधिकारी है पुरोहित उद्धारकर्ता के लिए. हम आभारी हैं प्रेषित प्रभु यीशु मसीह के लिए जिससे हमें आशीष मिलता है. हम आभारी हैं अपने पवित्र कर्ता प्रधान मॉर्सन के लिए. हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन सब के साथ रहे जिन सब इस सुबह भाग ले रहे हैं. हम सबको आशीष दीजिए जिससे हम सुन सकें कि हम अपने दिल को खोलकर सभी भाषा को अपने ऊपर ले सके और सबके लिए सेवा कर सके. हम ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से कहते हैं. आमीन.
It will now be our
privilege. अब हमारा सौभाग्य होगा हमारे भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस एस मॉन्सन को सुनने में. उनके भाषण के बाद संगीत मंडली ब्यूटिफुल ज़ायन बिल्ट अबव को गाएंगे. गीत गाने के बाद हम प्रधान बॉयड के पैकर 12 देवदूतों को के परिषद के प्रधान को सुनेंगे. उसके बाद फिर एल्डर लेन जी रॉबिन्स जो 70 के अध्यक्षता है को सुनेंगे. बहन शेरल एस्पलन प्राथमिक अध्यक्षता की दूसरी सलाहकार फिर हमसे बातें करेंगे. प्रेसिडेंट मंसन.
मेरे भाइयों बहनों, मैं बहुत प्रशंसित हूँ आपको इस महान सम्मेलन में स्वागत करने के लिए. हम दुनिया भर में कई स्थानों में इकट्ठा हुए हैं उन भाइयों और बहनों को सुनने और उससे सीखने के लिए जिन्हें हम महाअधिकारियों और गिरजाघर के महा अफसरों के तरह स्वीकार किया है. उन्होंने स्वर के सत्य ली है अपने संदेशों को. ये सम्मेलन 90 सालों के वर्ष घाट के जब हम महासम्मेलन के रेडियो द्वारा प्रस्तुत किए थे 1924 के अक्टूबर सम्मेलन के दौरान सभाओं पहली बार रेडियो द्वारा प्रस्तुत हुई थी गिरजाघर के अपने ACL नामक स्टेशन द्वारा. यह सम्मेलन टीवी प्रसारणों के भी 65 सालों के वर्ष घटना मानता है. 1949 अक्टूबर में हुए महासम्मेलन पर सभाओं पहली बार पूरे सॉल्ट लेक क्षेत्र में KSL टेलीविजन द्वारा प्रसारण किया था. हमें आधुनिक मीडिया के आशीर्वादों के प्रशासन है जो लाखों गिरजाघर के संदेशों को महा देता है महान सम्मेलन के रूप में. जब से हम पिछले 6 महीनों पहले थे ये नया मंदिर का संपूर्ण हुआ है और एक का द्वारा संपूर्ण हुआ है. मैं प्रधान उक्तोफ फोर्ट लॉन्डोल्फ फ्लोरिडा मंदिर का संपूर्ण किया. एक बढ़िया युवाओं का संसार समारोह पेश किया गया समारण से एक दिन पहले. उसके बाद के 3 में रविवार मैं 4 तारीख को मंदिर की 3 सभाओं में समारण किया गया. सिर्फ 2 हफ्ते पहले मेरा स्वभाव था ओगडन यूटा मंदिर को दोबारा समर्पण करने की जो पहली बार 1942 में प्रधान जोसेफ लिंक स्मिथ द्वारा समर्पण किया गया था. एक विशाल संकट समय हुआ था दोबारा समर्पण से एक दिन पर. सब मिलाकर 16,000 युवाओं ने भाग लिया था दोबारा समर्पण के समारोह. अगले दिन संपन्न हुए थे जिसमें कई भाइयों साथ दिया जिसमें साथ थे महिलाओं के अध्यक्ष के नेताओं और मंदिर प्रधान। हम अब भी मंदिरों बनाना जारी रखेंगे। अगले महीने नया फिनिक्स अरिजोना मंदिर का संपूर्ण है और अगले 2015 में हम आशा करते हैं कि 5 अन्य मंदिर का संपूर्ण और दोबारा समर्पण होगा। अन्य मंदिरों भी मुमकिन है अगर हम पर समाप्त हो जाए। जैसा मैंने अप्रैल में कहा था, जब पहले की तय किया गया मंदिरों का निर्माण और संपर्ण संपत्त हो जाएगा, क्योंकि हम अपने कोशिशों पहले घोषणा किया मंदिरों को निर्माण संपन्न करने में लगाए थे। हम इस समय कोई भी नई मंदिर का घोषणा नहीं करेंगे, हालांकि भविष्य में जब जरूरत दिखाई और हम स्थानों नियुक्त कर देंगे तब हम अन्य मंदिर को घोषणा करेंगे। गिरजाघर की बढ़ती जारी है। अभी तक 15 लाख से ज्यादा सदस्य है और साखिया बढ़ती जा रही है। हमारे प्रचारक कोशिशों आगे बढ़ रहे बिना कोई रुकावट के। हमारे पास 88,000 प्रचारक हैं जो सेवा कर रहे हैं दुनिया भर में सुसमाचार के संदेश के लिए। मैं वो भी बड़ा योगदान है। अब मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि अपना ध्यान भाइयों और बहनों पर ध्यान दो जो आज के लिए हमारे सुसमाचार। जब हम सुनेंगे हमारे हृदय को छू लेगी, हमारा विश्वास बढ़ेगी। मैं विनम्रता से प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Several years ago, Sister Packer and I went to the Oxford.
कई साल पहले बहन पैका और मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे. हम अपने सातवें महाआजा के सोची को ढूंढ रहे थे. ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट के कॉलेज के नेता डॉक्टर प्रॉपर ने दयाल तूत दिखलाया. कॉलेज के आर्काइविस को सूची लाने दिया. वहाँ साल 1853 में हमें अपने पूर्वजन के नाम जॉन पैका को पाया. एक साल बाद हम वापस ऑक्सफोर्ड को गए. सुंदर से पूरे धर्मशास्त्र को क्राइस्ट के कॉलेज के किताबघर को दिया. यह डॉक्टर प्रॉपरवेल को तकलीफ दे लगा. शायद उसने सोचा कि हम ईसाई नहीं थे, तो उसने कॉलेज के पादरी को किताब लेने के लिए बुलाया. पादरी को धर्मशास्त्र को देने से पहले हमें ट्रॉपिकल गाइड को खोला और उसे एक पद दिखलाया. 18 पन्नों का बहुत ही छोटे से लिखा हुआ सिंगल स्पेस यीशु मसीह और लिखा गया ये उद्धारकर्ता पर पूरे धर्मशास्त्र को साथ में इकट्ठा किया गया हुए सच्ची है जो दुनिया को इतिहास में लिखा गया है. पुराने और नए नियम, मोमन की धर्मशास्त्र, डॉक्ट्रिन और कवनेंस और द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस की गवाही है. किसी भी तरह से इस सूची पर चलो. मैंने उसे बतलाया. बगल बगल में ऊपर और नीचे किताब से किताब, महातव के बाद महातव, तुम जानोगे कि वो हमेशा है. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कार्य में दिव्य सुंदर गवाही के साथ उसका पैदाइश, उसका जीवन, उसका शिक्षण, उसका सूली पर चढ़ना, उसकी पुनर्जीवित और उसका प्रश्चित करना. पादरी के साथ उद्धारकर्ता के कुछ शिक्षण बताने के बाद वातावरण बदल गया और उसने हमें हिम्मत को सहर कार्य जिसके साथ रोमन्स के जमाने को बतलाने वाली चीजें. ट्रॉपिकल गाइड में लिखे हुए संवादों में ये मोमन की धर्मशास्त्र में से है. यीशु मसीह का दूसरा गवाही, हम मसीह का चर्चा करते हैं, हम मसीह में आमंत्रित होते हैं, हम लोगों को मसीह के विषय में उपदेश देते हैं, हम मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हैं और हम अपनी भविष्यवाणी के अनुसार लिखते हैं कि हमारी संतान या जान सके. उसकी खुद के शब्दों में उद्धारकर्ता ने बतलाया, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ. और मोमन के धर्मशास्त्र में उसने बतलाया कि सुनो, मैं वही हूँ जो कि अपने लोगों को मुक्त करने के लिए सृष्टि के नींव के समय को करने के तैयार थे. सुनो, मैं यीशु मसीह हूँ. मुझे से सारा मनुष्य समझ जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे. ये पर्व कई स्तर को कार्य है जिसमें से कई चीज़ है जो यीशु मसीह के दिव्य कार्य को मुक्तिदाता की तरह बतलाती है. यीशु मसीह के प्रश्चित के द्वारा हम सब आदम के पतन होने से हम सभी को मुक्ति प्राप्त हुआ है. जो आदम और ईव को ईडन का बगीचे में मना किया हुआ फल खाने के बाद हुआ था, जैसे कुरिन्थियंस में बतलाया गया है. और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे. मोमन की धर्मशास्त्र सिखलाता है कि प्रस्तुतित करना की चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मानव समाज को नष्ट होने से बचाया ही नहीं जा सकता है. हाँ, सभी कटोहार है, सभी पीटित है और बकते हुए हैं और नष्ट होंगे. केवल प्रस्तुत कुछ की जो कि हितकारी है, उसी का द्वारा बच सकेंगे. हम सही तरह से आशीर्वाद आशिया जीवन को नहीं बता रहे हों और हमारे गलतियों के लिए यहाँ कार्य है करने को, परंतु हमें धरती पर आने से पहले हमें उसकी नियम का पालन करने को कहा था और उसके नियम को, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. परंतु उसकी अनुग्रह से, उस चुटकारे की द्वारा से इस मसीह में सेंटमेंट धर्म तैयारी जाते हैं. उद्धारकर्ता ने प्रशिक्षित किया जिस तरीके से हम साफ हो सके. हम उसका भक्ति करते हैं और उसके जानते हैं वह पीड़ा जो उसने हम सब के लिए और वो पीड़ा जो उसने हम में से हर एक के लिए झेला था. गेथसेमने और बगीचे और क्रूस पर चढ़ाने में के समय को उसने यह महान विमत्रा के साथ किया था. जो पश्चाताप करेंगे और पाप को छोड़ देंगे वे उसके दिए के हाथ को अपने फिर पर महसूस करेंगे. जो उसके वाणी और उसके चुने हुए सेवकों को वाणी को सुनेंगे शांति और समझ को महान दुख और मुसीबतों के चैन में भी प्राप्त करेंगे. उसके बलिदान का परिणाम है कि हमें पाप से बचाइए ताकि सभी को पछतावा से मुक्ति मिले और आशा को महसूस करें. अगर उसके प्रस्तुतित्व को पूरा नहीं किया होता या कोई मुक्ति नहीं होती या जाने जीने के लिए मुश्किल से भरे दुनिया होता. अगर हमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा नहीं मिला होता. अगर हम अपने आप को कभी साफ नहीं करे होते और आगे बढ़ते होते. यीशु मसीह की दया और सुंदरता सिर्फ उनके लिए है नहीं है जो बुरे कार्य करने से होता है, ये जो अच्छा नहीं कर पाते हैं, परंतु यह आनंद तक ही शांति का वादा उन सभी के लिए है. उसके शिक्षाओं को मानेंगे उसका दया से मान दुख बढ़ता है. अभी हाल में मुझे एक महिला के पत्र मिला जिसने अपने जीवन में महान दुखों को झेला था. बहुत ही गलत और जो वो नहीं जानती थी, परंतु बतलाया गया कि उसके खिलाफ हुआ था. उसने बतलाया कि उसने महान खड़ावत को झेला था. अपने गुस्से में वो दिमागी तौर से रोने लगी. किसी को इस महान गलती के लिए भरना पड़ेगा. इस खास दुख और स्वालन के समय पर उसने लिए उसके हृदय में तुरंत ही जवाब आया, किसी ने इसे पहले की बार दिया है. अगर हम ये नहीं जानते कि उद्धारकर्ता का बलिदान हमारे लिए क्या कर सकता है, हम जीवन भर पछतावा में रह सकते हैं कि हमें कुछ गलती किया है या किसी का साथ बुरा किया है. वो गलती जो गलती से हुई हो को साफ किया जा सकता है. अगर हम उसके प्रस्तुत को समझेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के महान शांति को प्राप्त करेंगे. उसके धरती पर देख रेख के समय और उसके दिव्य मिशन हमारे उद्धारकर्ता की तरह. यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के दुनिया भर में फैलाता जीवन के ज्ञान और उद्धारकर्ता के शिक्षा को पुनर्स्थापित करने के लिए यह महान सम्मेलन 94 भाषण में सेटेलाइट से 101 देशों में दिखलाया गया रहा है, परंतु यह सभी देश में इंटरनेट पर भी है जहाँ गिरजाघर है. हमारे पास 3,000 से ज़्यादा स्टेक्स है. हमारे पास 80,000 पूरे समय को प्रचार कारण सेवा में है और गिरजाघर में 15 मिलियन से ज़्यादा सदस्य है. यह नंबर या दिखला रहे हैं कि जो पत्थर पाठ से बिना हाथों को कटा हुआ का आगे बढ़ता रहता है और अंत में पूरे दुनिया में फैल जाएगा. परंतु गिरजाघर के संगठन कितना भी बढ़ जाएगा या कितने मिलियन हमारे साथ शामिल हो जाए, चाहे कितने भी भागों और देशों में हमारे प्रचारकारों पहुंच जाए, या चाहे हम कितने भी भाषाओं में बातें करें, यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्चाई सफलता व्यक्तिगत देशों के धार्मिक शक्ति द्वारा ही नापा जा सकता है. हमें विश्वास की शक्ति चाहिए जो मसीह के सभी विश्वास चलने के हृदय में पाया जाता है. बचाने वाले आशा की गवाही है जो कहीं नापा या तोला नहीं जा सकता है. यीशु मसीह उस आशा की नींव है. हम जवान और बुजुर्ग शादी शुदा और अविवाहित का गवाहियों को मजबूत करते हैं को ढूंढते हैं. हम यीशु मसीह के सुसमाचार को आदमी महिला और बच्चों सभी जातियों और देशों धनी और गरीब को शिक्षा जरूरी है. हमें अभी जल्द परवरित और जो हमारे बीच में कई गिरजाघर को शुरुआत करने वाले को बचाए हों। हमें उनको ढूंढना है जो खो गई है और उन्हें मदद से वापस यहाँ लाना है। हमें सभी को ज्ञान और दर्शीय और आधार्मिक शक्ति की ज़रूरत है। इस गिरजाघर का हर एक सदस्य व्यक्तिगत तौर से गिरजाघर के एक महान भाग है, क्योंकि जिस प्रकार देह को एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह से सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देहन, उसी प्रकार मसीह भी है। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, इसलिए कि देह में एक हूँ अंग नहीं परंतु बहुत से है। हर सदस्य जीवन की गवाही से सेवा करता है और यीशु मसीह के शिक्षा का हमें विरोध का साथ लड़ाई में शामिल है और हमें हर एक की ज़रूरत है अगर हम उद्धारकर्ता के लिए हम हुए कार्य में सफल होना चाहते हैं। तुम शायद सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला हूँ। सही नहीं, जोसेफ स्मिथ ने कहा, कई बार अकेलापन महसूस किया था। वो महान बना परंतु 14 साल के उम्र का लड़का होने से उसने शुरुआत किया था इस सवाल से, कौन सा गिरजाघर में मुझे शामिल होना है। जोसेफ की उद्धारकर्ता ने विश्वास और गवाही बढ़ती रही जैसा हमारा होना चाहिए। अगर पर आज्ञा पर आज्ञा, थोड़ा पर थोड़ा, यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ दूंगा। जोसेफ प्रार्थना करने के घुटने पर हुआ और कितना महान कार्य हुआ प्रार्थना और पहले प्रतिकारण के उसके परिणाम में। 12 दैवत्वों में से एक होने से मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही को बयान करता हूँ। वह जीवित है, वह हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता है। मसीह के प्रसिद्ध के कारण सारे मनुष्य बच सकते हैं। वो इस गिरजाघर का संचालन करता है। वो अपने सेवकों के लिए अजनबी नहीं है, जबकि हम आने वाले जीवन की ओर आत्मा विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं। उसका आत्मा हमारे साथ होगा, या उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है उनकी जीवन में आशीर्वाद और मार्ग देने के लिए जो सही है, सही और सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। मैं उसकी गवाही यीशु मसीह के नाम से देता हूँ, आमीन।
Which way?
परमेश्वर को खुश करने से पहले दूसरों, तुम किस तरह हो? प्रधान पोएट के पेका ने मुझे इस पिछले सवाल की संदेश में डाला जब हम पहले कार्य के लिए साथ जा रहे थे नए 70 के तरह। बिना के समय सवाल की स्थिति देखकर पूछा, मैं अचंभे में पड़ गया। एक 70 वह आगे बोला, भौषिकता से बातें कर रहा था सभी सदस्यों की ओर से, परंतु वह भौषिकताओं के शब्दों का संदेश को बदला रहे थे। कभी ना भूलने तुम किस तरह हो, ये एक शक्ति भरा शिक्षण है। तुम ना तो मनुष्य के तिरस्कार से और ना ही उनके अवदेशों से द्वारा। लेही ने अपने में ये डर दूसरे लोका महान के दूसरे लोगों के प्रभाव में अगर लोग ढंग बदल देते हैं, अगर चाल चलन नहीं एक को निकार करने के जिम्मेदार बना, हमको उंगली उठाते हैं, हम के लिए इज्जत बाहरे सहस्तव को ढूंढते हैं। मगर जब इंसानी डर हमें पाप से क्षमा करता है, ये एक फंदा बन जाता है। प्रोवेब्स के किताब में लिखा की है, ये फंदा चलाकी के हमारे दयालुता की ओर बढ़ाता है, ताकि परमेश्वर जो पसंद नहीं करता ये चाहता है कि कार्य को करे। कमजोर विश्वासी के लिए ये कि महान रुकावट की तरह है। उद्धारकर्ता उद्धारकरण में कुछ प्रस्कारों से इंसानी डर के अपने साथ मिशन की सेवा में ले जाने हम अपने सही साथी से गलत हाथ कर रहे हैं। 22 के युवा बारे उम्र में जब जोसेफ स्मिथ भूल गया था कि किस तरह करे, तब उसने प्रभु के इज्जत लिए था और मार्टिन हैरिस को 116 धर्मशास्त्र के पन्नों को उधार देने के लिए। शायद जोसेफ स्मिथ हैरिस मार्टिन हैरिस को उसकी मदद का आभारी होना दिखलाना चाहता था। हम जानते हैं कि जोसेफ स्मिथ बहुत ही उत्सुक था दूसरे गवाही घटनों के उसके गलीफ जुटाने अपने और फैसले करने की मदद के लिए। चाहे कुछ भी जोसेफ का कारण हो, ये कितने भी कारण हो, प्रभु ने उन्हें माफ नहीं किया और उसके पास लगा दिया। कितनी बार तुमने गलती किया है और अपने आप को इंसान की मां किया है, इसलिए देखो तुम्हें परमेश्वर से ज्यादा इंसान के डरना नहीं चाहिए। जबकि खतरे को झेलना हिम्मत की बात है, सच्चे हिम्मत का चिन्ह इंसानी डर पर जीत रहा है। उदाहरण में डेनियल की प्रार्थना से उस शेर से झेलने की मदद किया था, परंतु उसे राजा दशरथ की में हिम्मत की नहीं था। परमेश्वर से धरती डरते हैं जिसने अपने प्रार्थनाओं को किया था। रानी एस्ता की प्रार्थना ने उसने वही हिम्मत दिया था उसके पति से सामना करने के लिए। हिम्मत की एक गुण है, मूल्य नहीं है, परंतु जैसे एस लिविस ने देखा था, हिम्मत है सभी गुण का प्रचार किया है। राजा सौल ने प्रभु के बातों को नहीं सुना था, लदाओं के कारवाओं था, क्योंकि वो लोगों भया में और उनके सुना। कई नई नियों और मुख्य नेताओं विश्वास किया, परंतु परेशियाओं के कारण प्रगत में नहीं मानते थे। कही आशा ने की थे मैंने, क्योंकि मनुष्य के ओर से थे, कही आशा के कि वे आराधनाओं में निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनके परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की उनके प्रिय शक्ति है। धर्मशास्त्रों में तरह के उदाहरण भरी है। मोमन सुनो, मैं निर्ता से कहता हूँ, परमेश्वर से आज्ञा लेने से, और मैं धरता नहीं कि इंसान क्या कर सकते हैं। सच्चा प्रेम हर डर को भाग देता है। निफाय लिहाय संसार के प्रसन्न कर वाली बातों को नहीं लिखता, लेकिन जो बच्चों संसारिक नहीं है और जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें हैं। कैप्टन मोरनाय सुनो, मैं तुम्हारे प्रधान सेनापति मोरनाय हूँ। मैं शक्ति को नहीं खोजता उसता होता चाहता हूँ। मैं संसारिक इज्जत नहीं ढूंढता, परंतु मैं अपने परमेश्वर का इज्जत, अपने देश का स्वतंत्रता और भलाई चाहता हूँ। इतिहास भर में भविष्यवक्ताओं की निंदा की गई है। धर्मशास्त्र में ये है, क्योंकि अपराधी सच्चाई का कतुरता मानते हैं, जो दुखता में करने जीवन आधार पहुंच जाती है। जैसे प्रधान हेरल बिली ने देखा, लोगों को सच्चाई बुरा लगता है, उनके निंदा भरे कार्य है, सही में गलती को खोद दे सही लगे। कोरियों की तरह जिसने अंत में मन मान गया, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर है। कोरियो झूठ बोलने में इतना माहिर था कि उसने अपने खुद की झूठ को विश्वास किया। निंद्रमंद हमेशा भविष्यवक्ताओं की खिल्ली उठाने हैं कि नई जमाने की नहीं है कि करते। वो गिरजाघर के विश्वास दिलाता है और पर दनाव देता है। एल्डर नील ए मैक्सवेल के शब्दों में, खुद को संतुष्ट करता है परंतु आत्मा सिद्धांत छोड़ता है। नेफाइट्स के बीच कई गिरजाघरों उधारकर्ता उनके भेंट दो साते हैं। जब तुम चार निफाई के इस भाग से सुनते हो, हमें दिनों की तुलना को देखो। और ऐसा हुआ कि 100 वर्ष संपत होते होते देश में हर गिरजा हो गया। उस तरह कई कार्य आज अंतिम दिनों में हर रहा है। कुछ सदस्य ये नहीं जान रहे हैं कि वे भी उसी फंदे में फंस रहे हैं जब वे प्रभु डालना चाहते हैं सिद्धानियों या पिताओं के परंपरा को अपनते हैं और सुसमाचार के परंपरा से मेल नहीं करते। अभी लोग खुद झूठ बोलते हैं और खुद के निकार देते हैं। बिशप से गुजारिश ये चाहते हैं कि मंदिर के सिफारिश की स्तर को हम करें स्कूल पुस्ती और प्रचारक के अर्जी में। इस तरह के दबाव में बिशप हीना आसन नहीं है। फिर भी उधारकर्ता की तरह जिसने मंदिर जो साफ किया था उसे पवित्र की लिए, आज के बिशप को मंदिर को स्तर के पूरी तरह से बचाने को बदला गया है। वो उधारकर्ता से जैसे कहा, मैंने अपने आप को अपने लोगों से लिया दया। अगर मेरे लोग मेरे वादा को पूरा करेंगे और इस पवित्र घर को मेला नहीं करेंगे। जिन्हें वो सिखलाता था, हमारा उधारकर्ता, वो जानता था कि उनके बीच में चलने, परंतु उनके हित में नहीं ढूंढता। जब दयालु के कार्य को करता था, जैसे बीमारों को ठीक करा, उन्होंने हमेशा आधार से आयात की। उसके बल को रोकने के बजाय में उसने फेरिसिस को अच्छा कराने कार्य करने के लिए को बुरा भला करा ताकि सिर्फ इंसान उसे जाने। उधारकर्ता सिर्फ एक ही सच्चा इंसान जो जिया था, सबसे निंदा था। उसके जीवन में उसके पार कई इल्जाम लगाए गए थे। उंगली उठाने पर कभी फिदा नहीं हुआ। थेड निफाय एक अध्याय तीन निफाय 28 अध्याय के बीच में उधारकर्ता ने शिक्षा पिता को लगभग 163 समय पर इस्तेमाल किया होगा। नेफाइट्स को साफ तौर से बतलाया हुआ कि वो वहाँ पर अपने पिता को प्रस्तुत करने के लिए था। आज जॉन 14 अध्याय से 70 तक उधारकर्ता ने लगभग 50 समय पर पिता के बारे में बताया है। सबसे स्थानियों में वे अपने पिता का सच्चा चेला था। वो अपने पिता को प्रस्तुत करने में बिल्कुल सच्चा था कि उधारकर्ता को जानना पिता को भी जानना जैसा है, पुत्र का देखना पिता को देखना जैसा है। उसके प्रेरित बारे उधारकर्ता हमें शक्ति से झूठ चुंगल से बचाने में दूसरे से या खुद की घमंड से। मैं आशा करता हूं कि उसके उधार से हम हिम्मत मिलेगा डरने नहीं और उनके खुश नहीं करने जो हमें डराएंगे। और मैं आशा करता हूं कि मैं उसका अनोखा उदाहरण हमें हमेशा मदद करेगा। जब दूसरे परमेश्वर की आज्ञाओं को अंदर करने के लिए इज्जत को जाना है, मैं आशा करता हूँ कि हम हमेशा याद करें कि हम उसके सच्चा चेला है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
एक बार एक जवान दल की महिलाओं ने मुझसे पूछा, अगर आप हमारे उम्र के होते तो आप क्या आशीष करते? अगर मुझे उस सवाल की अभी जवाब देना होता, मैं ये कहती, मैं आशा करती हूँ कि जब मैं तुम्हारे उम्र की थी, मैं प्रभु भोज के महत्व को और ज्यादा समझती। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जेफरी आर हॉलैंड के प्रभु भोज पर बतलाए हुए को ज्यादा समझती। उसने कहा, प्रभु भोज सिद्धांत में एक सहज तरीके से प्राप्त किया किया हुआ निमंत्रण है कि ये एक सच्चा धार्मिक अनुभव एक पवित्र मेल आत्मा के लिए का नवीकरण है। किस तरह प्रभु भोज एक सच्चा धार्मिक अनुभव है एक पवित्र मेल आत्मा के लिए का नवीकरण है हर सप्ते के लिए। प्रभु भोज एक धार्मिक शक्ति अनुभव बनता है जब हम प्रभु भोज के प्रार्थना को सुनते और अपने वादों को दोहराते हैं। ये करने के लिए हमें यीशु मसीह के नाम को अपने इच्छा से लेना चाहिए। इस वादा के साथ प्रधान हेनरी बी आयरिंग ने सिखलाया कि उसके जरूरतों को अपनी तरह जानो। हम उसको अपने जीवन की सबसे जरूरी भाग जानेंगे। हम वह करेंगे जो वो चाहता है, ना कि जो हम चाहते या जो दुनिया हमें करने को सिखाती है। जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, हम ये भी वादा करते हैं कि हमेशा यीशु मसीह को याद करेंगे। उसको सूली पर चढ़ाने से पहले की रात को मसीह ने अपने चेलों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया और प्रभु भोज को स्थापित किया। उसने रोटी को तोड़ा, आशीर्वाद दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरे शरीर है। फिर उसने कटोरा लेकर प्रार्थना किया और अपने देवदूतों को पीने को किया और कहा, ये मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापियों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। नीफाइट्स और अंतिम दिनों में उसके गिरजाघर को दोबारा पुनः स्थापित करने के लिए उसने दोहराया कि हमें उसे याद में प्रभु भोज को लेना है। जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, हम परमेश्वर को गवाही देते हैं कि हम उसके पुत्र को हमेशा याद करेंगे, न कि सिर्फ प्रभु भोज के ही समय। इसके मतलब है कि हम हमेशा उद्धारकर्ता को के उदाहरण और शिक्षणों को अपने इच्छाओं, अपने चुनाव और अपने कार्य को मार्गदर्शन देने के लिए देखेंगे। प्रभु भोज प्रार्थना हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा उसके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। धरती के जीवन का एक महत्व है कि वो प्रार्थना की किया हम वो सब चीजों को करेंगे जो प्रभु हमें करने को कहेगा। प्रभु भोज हमें अंतर्दृष्टि का एक अवसर देता है और परमेश्वर की ओर हमारे हृदय और कार्य को मुड़ने का अवसर देता है। प्रभु भोज सच्चे धार्मिक अनुभव का समय प्रदान करता है जब हम उद्धारकर्ता के बचाने वाले और महान शक्ति के बारे में उसके प्रेषित पर सोचते हैं। एक जवान महिला की नेता पर्सनल प्रोग्रेस के कार्य के जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने प्रभु भोज के यीशु भजन और प्रार्थनाओं परिणाम बनाया। हर सप्ताह उसने प्रभु भोज को दोहराना अपने आप के अंतर्दृष्टि से संचालन किया। उसने अपने किए हुए गलतियों को याद किया और वादा किया अगले सप्ताह वो नहीं दोहराया जाएगा। अपने कार्य को पूरा करने के लिए उसने उसके नाम को अपने ऊपर लिया और उसके आज्ञाओं का पालन किया। वो अपने आप को सुधार कर और पाप से मुक्ति होकर खुशी थी। एक रविवार को उसके अंतर्दृष्टि के बाद वो दुखी और निराश वाली महसूस कर रही थी। वह देख सकती थी कि वही गलती को बार बार कर रही थी हर सप्ताह। परंतु फिर उसने व्यक्तिगत योजना बनाई कि वह प्रायश्चित के महान भाग को अनदेखा कर रही थी। मसीह की ना खत्म होने वाले शक्ति, वो भूल रही थी कि सभी समय पर उद्धारकर्ता ने उसे मदद किया था वो बनने में जो उसे बनना जरूरी था और अपने क्षमता से ज्यादा सेवा को करने में। याद करके उसने पहले हफ्ते के विषय को दोबारा सोचा। उसने कहा, मैं अपने खुशी के एहसास को उदासी में बदलते हुए देख रही हूँ जबकि उसने मुझे कई अवसरों और क्षमताएं को दिया है। मुझे अपनी क्षमता पता थी अपने बच्चे की जरूरतों के लिए जब वो स्पष्ट नहीं थे। मैंने ये उस दिन जाना जब मैंने महसूस किया कि मैं और ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने दोस्त को केवल शक्ति भरे शब्दों को दे सकती थी। जब मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के शक्ति को प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया, मैंने अपने किए हुए पश्चाताप के कार्य में और ज्यादा आशा महसूस किया था। मैंने आने वाले सप्ते के लिए दोबारा आशा की उम्मीद किया और सप्ते जिसे जिसकी आत्मा उनके साथ सदैव रहे प्रभु भोज में सबसे जरूरी लगा। एल्डर मेलविन जे बेलर ने सिखलाया कि प्रभु भोज किस तरह से चंगाई और सफल की अनुभव को प्रदान करता है। उसने कहा, हम में कौन है जो उसके आत्मा को हानि पहुंचाता है शब्द सोच या कर्म के साथ। हमें चीजों के लिए माफी चाहते हैं और आशा करते हैं कि क्षमा प्राप्त होगी। क्षमा प्राप्त करने का तरीका है अपने पापियों के पश्चाताप उनके लिए होगा जिनका खिलाफ हमने पाप या अपरोध किया होगा और उसे क्षमा मांगना होगा और फिर प्रभु भोज के मेज पर दोबारा जाने के लिए तैयार, जहां अगर हमने सही पश्चाताप को किया होगा और अपने आप को सही तरीके से रखा होगा, हमें क्षमा प्राप्त होगा। एल्डर बेलर ने कहा, मैं एक गवाह हूँ कि वहाँ पर प्रभु भोज के दौरान आत्मा मौजूद रहा है जिससे तन मन में सुख छा जाता है। तुम आत्मा के घाव को चंगाई प्राप्त करते महसूस करोगे और भोज को कम होते हुए सुख और खुशियों उन आत्माओं को प्राप्त होता है जो धार्मिक भोजन के लायक और सच्चाई से लेने की आशा करते हैं। हमारे दुखित आत्मा चंगाई और दोबारा अच्छे हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ रोटी और पानी हमें उद्धारकर्ता के बलिदान उसके शरीर और खून को हमें नहीं याद दिलाता है, परंतु क्योंकि लक्षण हमें ये भी याद दिलाता है कि वो हमेशा हमारे जीवन की रोटी और जीवन का जल देता है। निफाइस को प्रभु भोज में मौजूद करने के बाद यीशु ने कहा, जो इस रोटी को खाता है वो अपनी आत्मा के लिए मेरे शरीर को खाता है और जो इस पानी को पीता है वो अपने आत्मा के लिए मेरे रक्त पीता है और उसकी आत्मा कभी भी ना तो भूखी रहेगी और ना ही प्यासी रहेगी। जब भीड़ ने कहा और पी लिया, खा और पी लिया, तब सुनो वे आत्मा से भर उठे। इन शब्दों के साथ मसीह हमें सिखलाता है कि आत्मा हमारे आत्मा को चंगाई देता और दोबारा नया करता है। प्रभु भोज का वादा भरा आशीर्वाद है कि हमारे साथ हमेशा उसकी आत्मा साथ होगा। जब मैं प्रभु भोज को लेती हूँ, मैं उस चित्र के बारे में सोचती हूँ जहाँ पुनर्जीवित उद्धारकर्ता अपने हाथों को फैलाए हुए है। मैं इस चित्र को पसंद करती हूँ। जब मैं इस मौके के बारे में प्रभु भोज के दौरान सोचती हूँ, मेरा आत्मा भर जाता है जैसे कि मैं उद्धारकर्ता के सभा को सुन रही हूँ। सुनो, मेरा दया का हाथ तुम्हारी ओर फैला हुआ है और जो मेरे पास आएगा उसे मैं स्वीकार करूँगा और धन्य है जो लोग मेरे पास आते हैं। एरोनिक पुरोहित रखने वाले उद्धारकर्ता को प्रस्तुत करते हैं जब वे तैयारी आशीर्वाद और प्रभुभोज को बांटते हैं। जब पुरोहिती रखने वाले अपने हाथों से हमें पवित्र लक्षण से देते हैं जो हमारे आत्माओं को आशीर्वाद और पवित्र करते हैं, ऐसा है जैसे उद्धारकर्ता खुद ही अपने दया को हाथों को बढ़ा रहे हैं। हम सबको आमंत्रित करते हैं अनमोल प्रेम के उपहार को लेने के लिए, उसके महान बचाने वाले बलिदान पश्चाताप क्षमा दया और आशा के द्वारा। जितना ज्यादा हम प्रभु भोज के विषय में सोचते हैं, उतनी ही पवित्र और महत्व भरा हमारे लिए होता है। ये है जो 96 साल उम्र के पिता ने जो बतलाया था जब उसके पुत्र ने पूछा था, पिताजी तुम गिरजाघर क्यों जाते हो? तुम देख नहीं सकते, तुम सुन नहीं सकते, तुम्हारे लिए चलना कितना मुश्किल है, तुम गिरजाघर क्यों जाते हो? पिता ने जवाब दिया, प्रभु भोज के लिए, मैं प्रभु भोज लेने जाता हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हम सब प्रभु भोज सभा में तैयार होकर आए, एक सच्चे धार्मिक अनुभव, एक पवित्र दल, एक दोबारा नए आत्मा के लिए। मैं जानती हूँ कि हमारे स्वर्ग पिता और हमारे उद्धारकर्ता जीवित है। मैं आभारी हूँ प्रभु भोज के उस अवसर के लिए जिसके द्वारा उसके प्रेम और आत्मा को महसूस किया है। यीशु मसीह के नाम से आमेन।
the choir and congregation.
Gaik mandli aur sabab hame guide us, O thou great Jehovah, gaane mein saath dengi. Geet gaane ke baad hame elder Chi Hong Sam Wang, jo 70 ke hai, ko sunenge, jo apne sandesh ko apne matrabhasha Cantonese mein kahenge. Angrezi bhasha mein sammelan kendra ke parde par dikhlaya jayega. Uske baad elder D. Todd Christopherson, jo 12 devadutton ke parishad hai, bhasan denge. Elder Christopherson ke bhasan ke baad kaik mandli, if I listen with my heart, ko gayenge.
孟孙会长经常邀请我们去主动救援其他人，令我想起在新约圣经中记载的一个故事。我认为这个是绝佳的例子。当中讲明教会的成员和传教士怎样能够主动经由支会议会和同心协力，就是说，其实是可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可
करता है। हमारे दिनों में शायद ऐसा हो, चार लोगों को घरेलू भेंट को जाना था जो आदमी को लखवे की रोगी था। वे अपने बिशप से प्राप्त हुए कार्य को पूरा कर रहे थे। मैं देख सकता हूं कि एक सहायक संस्था से आई, एक एल्डर्स परिषद से, एक एरोनिक परिषद से, और अंतिम मगर कम नहीं एक पूरे समय का प्रचारक है। हाल ही के वार्ड साला में कुछ व्यक्तिगतों के जरूरत पर
सलाह करने के बाद बिशप ने बचाने वाले कार्य को दिया। इन चारों को उस लखवे को के रोगी को मदद करने की नियुक्ति मिली थी। उस स्थिति में वह खुद ही गिरजाघर नहीं आ सकता था, उन्हें घरेलू भेंट करना पड़ता था, उन्हें जाकर ढूंढना पड़ता था और तब वे जाते थे। वह आदमी फिर उसके पास लाया गया था, मगर कमरा बहुत भरा हुआ था, वे दरवाजे से अंदर नहीं जा सके। मैं जानता हूं कि उन्हें बहुत मेहनत किया था, परंतु वे अंदर नहीं जा सके। वह नहीं हुआ जो सच्चा सोचा गया था। यह उनके बचाव के रास्ते में कई मुसीबतें थे, परंतु उन्होंने हर हाल नहीं मानी। उन्होंने उस लकवे के रोगी को दरवाजे पर नहीं छोड़ा। उन्होंने साथ में सलाह किया कि वे उसके बाद क्या कर सकते थे, वे किस तरह उस आदमी को उसके पास अच्छा होने के लिए ला सकते थे। यीशु मसीह के साथ आत्माओं को बचाने के कार्य के सहारा के लिए उन्होंने योजना बनाया जो सरल नहीं था। मगर उन्होंने उस पर कार्य किया। परंतु जब वे भीड़ कारण उनके निकट पहुंचे सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे हुआ था खोल दिया, और जब वे उसे उड़े चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे को रोगी पड़ा था लगता दिया। वे उसे छत तक लाया, जानते हुए कि वे बाहर के सीढ़ी और अंदर नहीं पहुंच सकेंगे सभी को उस छत पर लाने के लिए। मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, इस वोट का जवान पुरुष पहले छत पर चढ़ा होगा, जबकि वह जवान और शक्तिशाली था, या उसके लिए बहुत कठिन नहीं था। उसके एल्डर्स परिषद और पूरे समय के प्रचारक के घरेलू श्रृंखलों के साथ ने मुसीबतों के साथ नीचे से धक्का दिया था। सहायक संस्था की बहन ने सावधान रहने को याद दिलाया था और उसने हिम्मत भरे शब्दों को बताया था। फिर आदमी छत को खोलते जबकि वाहन ठीक होने के लिए इंतजार करते हुए आदमी को दिलासा दे रहे थे ताकि खुद से चल सके और आजाद हो जाए। इस बचाने वाले कार्य में सभी को साथ काम करना जरूरी है। उस खास समय पर उस लकवे के रोगी को छत से नीचे करने के लिए सावधान रहना पड़ेगा। उन चार लोगों को साथ मिलकर और मेल में काम करना पड़ेगा। उन चारों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें एक ही समय पर उस लकवे के रोगी को नीचे करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरे तीन से पहले किस रस्सी को नीचे करेगा, आदमी अपने छत पर से गिर जाएगा। वह अपने कमजोर हालात के कारण खुद ही पकड़ नहीं सकता था। उधारकर्ता के सहायता देने के लिए हमें साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। यीशु मसीह के कार्य में अंत में उस रोगी को यीशु के सामने रखा गया था। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उस पर दया दिखलाया और उसे ठीक किया, ना कि सिर्फ शारीरिक तौर से बल्कि धार्मिक रूप से भी। पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, यह आश्चर्य नहीं है। क्या हम सब भी या नहीं चाहते कि हमारे साथ भी हो? मैं जरूर चाहूंगा। क्या तुम अपने जीवन में किसी को जानते हैं जो धार्मिक लकवे से का शिकार है, कोई जो खुद ही अपने आप से गिरजाघर वापस नहीं आ सकता, आदमी या औरत? हमारे बच्चों में से एक, हमारे माता पिता हैं, एक पति या एक दोस्त में से एक हो सकता है। गिरजाघर उतनी यूनिट में अभी के कई पूरे समय के प्रचारकों के साथ बिशप और शिक्षा प्रधानकों के लिए अच्छा होगा कि वे अपने वार्ड और शिक्षा के सहायकों का और भी इस्तेमाल करें। बिशप वार्ड सलाह के हर सदस्य को उनके नामों की सूची कर लोग को लाने को कहेंगे। वार्ड सलाहकार के सदस्य साथ में सावधानी से सलाहकार कर सके हैं कि किस तरह से जब से अच्छी मदद पहुंचेंगे। पूरे समय के प्रचारकों वोट के इस बचाने वाले कार्य के लिए महान सदान है। यह जवान और शक्तिशाली है। वे खास लोगों के नामों के साथ काम करने के प्रेम करते हैं। वे वोट के सदस्य के साथ काम करना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि यह उनके लिए महान अवसर है। वे प्रभु के राज्य के बनने विश्वासी है। उनके पास मजबूत गवाही है। वे और ज्यादा मसीह की तरह बन सकते हैं जब वो बचाने वाले कार्य में भाग लेंगे। अंत में मैं तुम्हारे साथ एक धर्मशास्त्र में पाए हुए कहानी के छुपे हुए खजाने को बताना चाहता हूँ। यह वेश 5 में है। जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा था, जोर दिया गया, मैंने इसे पहले नहीं देखा था। उनके विश्वास, हमारे साथ के विश्वास भी दूसरे को अच्छा रहने में मदद करेंगे। वे कौन लोग थे जिनके बारे में यीशु ने बतलाया था? वे उनके शामिल कर सके हैं जिन चेहरों ने लकवे को रोक दिया था, वही आदमी खुद ही, वे लोग जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया है, और सभी जो वह यीशु के शिक्षण की सुन रहे थे और अपने हृदय में खुश हो रहे थे चमत्कार को देखने के लिए। वे साथ में एक पति, एक माता पिता, एक पुत्र या पुत्री, एक प्रचारक, एक परिश्रम प्रधान, एक सहायक संस्था प्रधान, एक बिशप और एक दूर के दोस्त को भी शामिल कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम सब को हमेशा जरूरतमंद को बचाने के कार्य को करने के लिए ढूंढना चाहिए। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह चमत्कारी परमेश्वर है। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और उसके पास शक्ति है बचाने और ठीक करने का, दोनों शारीरिक और धार्मिक तौर पर। जब हम उनके साथ उनके आत्माओं को बचाने वाले मिशन के कार्य करते हैं, हम भी इस तरह से बच सके। मैं उसके पवित्र नाम से ये गवाही देता हूँ, यीशु मसीह के भी। Amen.
Muy buenos días. William Shakespeare's play.
William Shakespeare का नाटक The Life of King Henry V में एक रात्रि का दृश्य है। अग्निकोट के अंग्रेजी सैनिकों के कैंप में फ्रेंच सेना के साथ उनके लड़ाई से पहले धुंधली रोशनी में और थोड़ा नकाब पहने राजा हेनरी अपने सैनिक के बीच घूमता है बिना पहचाने जाए। वो उसे बातें करते हैं ये जानने के लिए कि उसके काम सखियों का फौज तैयार है कि नहीं, और क्योंकि वो उनके पहचान नहीं पा रहे वे खुले दिल से जवाब दे रहे थे। एक वार्तालाप में राजा हेनरी और उनके सैनिक बातें कर रहे थे कि कौन जिम्मेदार लेगा लड़ाई के मैदान के सिपाही की, राजा या सिपाही खुद। एक बार राजा हेनरी घोषणा करता है, मैं सोचता हूँ कि मैं राजा के फौज में ही मरना पसंद करूँगा क्योंकि उसका मकसद सही है। माइकल विलियम्स जवाब देता है, हम तो इतना कुछ नहीं जानते। और वो एक और सैनिक इस पर मंजूरी देता है, हाँ और ये बात तो हमें जाननी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ राजा का नौकर बनना है। अगर उसका मकसद गलत है हम दोषी नहीं क्योंकि हमारे सिर्फ आज्ञा का पालन करना है। विलियम्स कहता है कि अगर राजा का मकसद सही नहीं है तो राजा की जिम्मेदार है कि उन सब चीज़ों के लिए जो होता है। असंभव की बात नहीं, राजा हेनरी नहीं मानता है। हर प्रजा की जिम्मेदारी राजा की है, पर हम प्रजा की आत्मा उसके खुद है। नाटक में शेक्सपियर के भाहस को खत्म करने की कोशिश नहीं करता है और एक या दूसरे तरीके के ये बहस हमारे समय तक खींचा जाता है जो हमारे जीवन से हर कर्तव्य की जिम्मेदारी लेता है। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम औरों को या खुद परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। कभी कभी लोग को पाना अपना अधिकार समझा लेता है। व्यक्तियों और दिल ने उनकी गालियों की जिम्मेदारी को अन्य लोगों के संस्कार पर संपतित करते, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम कि उन्हें बच्चे और तरह की पेश आए जिससे तरह नैतिक चुनने की शक्ति उनसे संभल दे देती है कि हम मनुष्य अपने के पापों के लिए जिम्मेदार रहेंगे। फैसले के दिन में ये उनका योजना है कि उनका इच्छा के हम अपने खुद के जीवन के निर्मर बनाने का मुख्य जिम्मेदार है। परमेश्वर हमारा जीवन नहीं जिएगा ना तो हमें काबू में रखेगा अपने कठपुतली की तरह जैसे लूसीफा ने करना चाहा था, ना तो उनके भविष्यताओं कठपुतली चलाने वाले बनाया जाएगा परमेश्वर की जगह पर। ब्रिंगम ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि दुनिया का या स्वर्ग का कोई अंतिम दिन संत मेरे किए काम के संतुष्ट रहेंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह का आत्मा प्रतिक्रम की आत्मा उन्होंने संतोष नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि खुद के लिए जानने कि वो खुद के लिए समझे। परमेश्वर हमें हमारे स्थिति में नहीं बचाता है क्योंकि हम जिस तरह है हम पवित्र है और कोई भी अपवित्र चीज उन उपस्थिति में नहीं जी सकता क्योंकि आदम की भाषा में पवित्र रता का मनुष्य उसका नाम है और उसका एकलौता का नाम है मनुष्य पवित्र का पुत्र। और दूसरा, परमेश्वर हमें कोई वैसा चीज नहीं हमें देगा जो हमें खुद नहीं चुनेगा और कोई कार्य द्वारा हमें परमेश्वर द्वारा बनने योजना में अंतिम चाहिए जो हमें मानो देता है। हम हमेशा आभारी रहेंगे कि उद्धारकर्ता की प्रायश्चित ने पिछले पाप पर विजय पाप किया है और ताकि हम इस दुनिया में आ सके। एदम की पतंग फूल की सजा नहीं पाए, इस तरह पतन से मुक्ति पाने के बाद हम परमेश्वर के साथ निरपद जीवन शुरू करेंगे और सदैव के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें भले और बुरे का ज्ञान रहेंगे और स्वर्ग हमें करने में स्वतंत्र रहेगा, ना कि दूसरे के प्रभाव में कर्म करेंगे। हम चुन सकते हैं कि हम किस तरह से व्यक्ति होनेंगे और परमेश्वर की मदद से उनकी तरह भी सकते हैं। इस मसीह का सुसमाचार मानव की उत्पन्न करता है कि हम क्या बन सकते हैं। यीशु मसीह के पवित्र प्राश्चित और उनके अनुरूप के द्वारा हमारे सेलेस्टियल कामों का अच्छी तरह और लगातार जीने के अफलतानाओं को मिलता देता है और हम एक मसीह के जैसे चरित्र पाकर पवित्र हो पाएंगे। नए परमेश्वर का एक आवश्यक गुण है, हम परमेश्वर में विश्वास रख सकते हैं, वो पूर्ण रूप से भरोसेमंद है। धर्मशास्त्र हमें सिखलाता है कि हम परमेश्वर देखते ढूंढते मार्ग पर नहीं चलता ना तो वे दया मदद ना पाए, ना तो वे उस बात से मुकरता को उनसे कहा है। इसलिए उस मार्ग सीधे है और उसके सड़क से इधर उधर नहीं जाया जाता और कि परमेश्वर की किसी का प्रकाश नहीं करता, वरना हर देश में जो उससे डरता है और धर्म की काम कर सकता है। हम नए के दिए गुण पर निर्भर रहते हैं विश्वास सास और अस के लिए। ये जानना कि परमेश्वर ने दया के स्थान को आयोजित किया है, ये दिखलाता है कि वो अपशक्तिक नहीं है, क्योंकि वो अपशक्त नहीं है इसलिए उन्होंने दया की लिए रास्ता बनाया ताकि वो अपने भूमिका निभाए, हमें आनंद नसीब के। इसलिए अब नए अपने विधान अनुसार काम करता है और दया पर अधिकार करती है उसका क्षेत्र में। मसीह के मृत्यु हो एक पश होकर बचाने के लिए नहीं, पर पश्चाताप दिलाने के लिए। हमें पश्चाताप करने के लिए पूरी तरह से उस पर निर्भर होना पैदा को बचाने वाला है। पश्चाताप के लिए खुद कुछ करने एक आत्मा इच्छा वाला बदलाव है। पश्चाताप को अनुरोग पाने का शर्त बनाकर परमेश्वर हमें जिम्मेदार लेना देता है। पश्चाताप हमारे नैतिक चुनने की शक्ति का सम्मान करता और उस पर बरकरार रखता है। इस प्रकार दया न्याय और मांग को संतोष कर सकती है और उन्हें सुरक्षा के बनाव में ले लेती है जब वे व्यक्ति और अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करता है। परमेश्वर की न्याय और दया को ठीक से नहीं समझना एक बहुत बात है। परमेश्वर की उपस्थिति या महानता को ना सेवकर करना एक अलग बात है, पर कुछ भी हम भी काम सफलता पाएंगे। कभी कभी बहुत काम अपने संपूर्ण दिव्य स्वभाव से। एक परमेश्वर जिसका कोई मांगे ना हो, वे एक परमेश्वर की तरह होता है जो जीवित नहीं है। परमेश्वर के बिना एक दुनिया, वो जीवित परमेश्वर जो नैतिक कानून बनाता है अपने बच्चों के देखभाल और सुधार के लिए। आशा दुनिया है जवान जहां सच्चाई और नई नियम नहीं है। सपेश्वत का मतलब है हर व्यक्ति अपने खुद का उच्चा अधिकार। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग इसके साथ देता है, वही परमेश्वर को नहीं मानते। कुछ लोग जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं खुद भी विश्वास करते हैं कि वो खुद अपने सही गलत को सुनने। एक जवान बालिक ने ऐसा कि मैं नहीं जानता कि मैं कुछ पाऊंगा कि हिंदू गलत है या कैथलिकिज्म गलत है या एपिज़ोन होना गलत है। मुझे लगता है कि सब तुम्हारे विश्वास से ताल्लुक रखता है। मैं नहीं सोचता कि कुछ सही या गलत है। एक और बालिक ने उसके धार्मिक विश्वास के बारे में पूछा आया। उसने कहा, मैं खुद में विश्वास करता हूँ। ये सब उसके बारे में है। मेरा मतलब है, तुम्हारे विश्वास पर अधिकार कैसा हो सकता है? कोई तुम्हें मजबूर करे या कहे तुम्हें ये विश्वास करना है, मगर तुम खुद को तो मजबूर नहीं कर सकते कि जिस किसी चीज पर विश्वास करने के लिए। जब से जादी करना एक चुनाव नहीं है। जो लोग विश्वास करते हैं कि कुछ भी या सब लोग सोच सच हो सकता है, लक्ष्य सिद्धिर सच्चाई और विश्वास सच्चाई जबरदस्ती ही तरह महसूस होता है। मुझ पर कोई दबाव नहीं कि मैं किसी चीज पर सच कौन सी मैं नहीं पसंद करता हूँ। ये सच है कि आनंद कानून और न्याय है। स्वतंत्रता मिलती है उससे बचने से नहीं, पर उसके अमल में लाने पर। अगर तुम कहो कि कोई नियम नहीं है, तब तुम्हें ये भी कहना होगा कि कोई पाप कर्म भी नहीं है। अगर तुम कहते हो कि पाप नहीं है, तब तुमको ये भी कहना होगा कि पवित्र भी नहीं, और अगर पवित्र नहीं है तब आनंद भी नहीं है, और अगर पवित्रता नहीं है और ना तो आनंद ही है, तब ना तो दंड ही होगा और ना तो दुख ही होगा। अगर ये सब बातें नहीं है, तब परमेश्वर भी नहीं हो सकता। संसारिक और धार्मिक मामलों में खुद जिम्मेदारी लेना का मौका ही परमेश्वर का दिया उपकार है, जिससे बिना हम परमेश्वर के पुत्रियों या पुत्र होने का संपूर्ण स्वभाव नहीं जान पाते हैं, और हमें उससे अपने ही चेताओं से सुरक्षित रखना है, ताकि हम गुणों चमत्कार और मासात है। एक आदमी की कहानी बतलाई गई है जो कम नहीं करता है। वो चाहता था कि कोई उसकी हर एक जरूरत को पूरा करे। उसके सोच के अनुसार गिरजाघर या सरकार या ढूंढे को उसके सेवा करने की, क्योंकि उसने अपने टैक्स और देश दसवां हिस्सा भर दिया था। उसके पास कान खाने को कुछ नहीं, पर वे काम से इनकार करता था खुद के संभव के लिए। हर एक मन को कर रहे नाराजगी में जिन लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश ही ने तय की कि अगर वे खुद के लिए कुछ नहीं करेगा तो उन्हें उस खबरस्ता से जाना चाहिए और उसे मरना देना चाहिए। खबरस्तान जाते समय एक आदमी ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ मकई है, मैं इसे दे दूंगा। तब उन्होंने लिए जाने वाले आदमी को बतलाया और उसने पूछा, क्या उनका मकई का छिलका छिलना है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। ऐसा मैं तो, उसने कहा, मुझे कब्रिस्तान लेता चलो। ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम स्वतंत्रता पुरुष और महिला बन जिसके पास क्षमता है और संपूर्ण संभावना को संसारिक और धार्मिक रूप से पाने का। मैं किसी भावकावे में नहीं कि ऐसा हो सकता है। हमारे खुद के कोशिशों के बिना उनके आवश्यक और अतल मदद को हम जानते हैं कि अनुरोग के द्वारा हम उधर पाए जितना कुछ भी हमारे बस में है करने के बाद। मेरा साधारण निवेदन है कि जिम्मेदारी उठाओ और काम पर लग जाओ, ताकि परमेश्वर के पास कुछ हो हमें मदद करने के लिए। मैं गवाही देता हूँ पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Thank you.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music.
Mormon Tabernacle ka gayak mandir ko aaj subah ke sundar sangeet pradan karne ke liye aabari hai. Hamare antim vachankarta pradan deta fugda pratham adhyaksha ke dusre salahkar. Uske tippaniyon ke baad gayak mandir subah ko samapt karegi. From all that dwell below the skies, Gakar. Phir samapti pratna Elder Bradley D. Foster, jo 70 ke hai, dwara diya jayega, President Uktuf.
Before this conference weekend,
is conference ko conference ke aane se pehle kuch pooch rahe the ki main German mein baat karu. Maine kaha nahi. लेकिन जब मैं बात करूंगा तो जर्मन में शायद वो आपको लगे कि मैं जर्मन में बात कर रहा हूं. हवाई जहाज के पायलट होने से मैं रात्रि के दौरान कई घंटों तक महादेशों और समुद्र को पार करता था, छोटी से खिड़की से बाहर रात्रि के बादल देखते हुए. खास करके मिल्की वे को मुझे परमेश्वर की बनावट पर बहुत विशालता और गहराई होती थी. कई प्रकार की दुनिया है. अभी एक सौ साल में नहीं हुआ था कि कई एस्ट्रोनॉम्स को हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को यह बोलना कि वह सिर्फ एक गैलेक्सी यूनिवर्स में है. वे विश्वास करते थे कि हमारे गैलेक्सी के आगे कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली स्थान, खाली ठंड, तारों, रोशनी और जीवन रहित. जबकि दूरदर्शक ज्यादा आगे बढ़ गया था, दूरदर्शक जो आकाश में लॉन्च करने के साथ एस्ट्रोनॉमर्स शानदार लगभग सही सभी अनचित सच्चाई को जान गए थे. जगत कितना बड़ा था जो कभी किसी से ने नहीं सोचा नहीं ही नहीं था कि स्वर्ग में कई गैलेक्सीज है. हमसे बहुत ही और दूर हर एक में कई हजारों बिलियन तारे. बिल्कुल कुछ ही समय में जगत पर हमारी जानकारी बिल्कुल बदल गई. आज हम इन में से कुछ गैलेक्सीज को देख सकते हैं. हम जानते हैं कि वे वहाँ हैं. वे वहाँ बहुत समय से हैं. परंतु पहले इंसान के पास उतने शक्तिशाली औजार नहीं था सेलेस्टियल रोशनी को जानने के लिए और एक गैलेक्सीज को देखने के लिए. हम यह विश्वास नहीं करते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता था. जगत की विशालता अचानक से नहीं बदल गई थी, परंतु हमें इस सच्चाई को नाकिड़क्रिया से देखने और समझने का क्षमता बदल गई है. और ज्यादा ज्ञान के साथ इंसान को महान चीजों को देखने को मिलता है जो सभी सोचा नहीं गया था. जो हम नहीं देख सकते हैं उस पर विश्वास करने में दिखता है. सोचो कि तुम पुराने समय में जा सकते हो और हजारों या साल पहले जा सकते हो. सोचो कि किस तरह उन्होंने अभी के कुछ नए विज्ञों को बातों जो अभी तुम्हारे मेरे पास है. उदाहरण में ये लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे और हम अगर हम उन्हें बड़े हवाई जहाज, माइक्रोवेव ओवंस, हाथों में इस्तेमाल करने वाले चीज़ों का जिसमें डिजिटल किताब रखे हैं कहानी बताएंगे और अपने नातियों की फिल्म को जो हम दुनिया भर के मिलनों लोगों को दिखलाते हैं. कुछ हमें शायद विश्वास करें, कुछ हम पर हंसेंगे, हमारे खिलाफ होंगे या शायद हमें चुप करने की कोशिश करें ये नुकसान पहुंचाएं. कुछ शायद जो वो जानते हैं न्याय शास्त्र कारण और तथ्य को करने की कोशिश करें ताकि वे दिखलाएं कि हम मार्ग से भटक गए हैं, पागल हैं या बहुत खतरनाक है। ये शायद हमें उन्हें गुमराह करने के लिए गलत भी ठहराएं, परंतु सही है। ये पूरी लोग पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, वे मददगार और सच्चे हो सकते हैं। वे शायद यह महसूस करें कि उनकी सोच सही है, परंतु वे उसी तरह नहीं देख सके हैं क्योंकि उन्हें पूरे सच्चाई के रोशनी को नहीं प्राप्त किया है। यह इंसान का तरीका है कि बोलना कि हम सच्चे हैं भले वे जानते हो कि वे गलत है। और अगर यही सच्चाई है तो हमारे लिए क्या सच्चाई है? क्या हम बिना सच्चाई जाने अपने जीवन को बताएंगे? क्योंकि कई झगड़ने वाले सुझाए हैं और हम अपने समझ और विश्वास पर निर्भर रहेंगे। मेरे टिप्पणियाँ क्या महत्व है कि परमेश्वर के खुशखबरी संदेश को बतलाऊं कि वह प्रभु है जो सभी सच्चाई को जानता है, ने अपने बच्चे को वादा किया है कि वे खुद ही सच्चाई को जानेंगे। कृपा इस वादे को जरूरत को जानें। आनंद तक शक्तिशाली परमेश्वर पूरे दुनिया को बनाने वाला उसने बातें करेंगे जो उनके पास एक सच्चे हृदय और सच्चे इरादे से जाएंगे। वह उनसे स्वप्न निगाह सोच और एहसास में बातें करेंगे। वह उस तरीके से बातें करेंगे जिसमें गलती नहीं होगी और जो इंसान के तजुर्बे से बाहर होगा। वह उनके जीवन में दिव्य मार्ग और जवाब देंगे। जरूर या ऐसे होंगे जो बुराई करेंगे, ऐसा कुछ भी होंगे ना हो ना सकते हैं कि अगर कोई परमेश्वर है उनके पास और अच्छा कार्य होगा करने के एक व्यक्तिगत इंसान के प्रार्थना को सुनने और जवाब देने से ज्यादा। परंतु मैं तुम्हें ये बतलाता हूँ, परमेश्वर तुम्हारे बारे में परवाह करते हैं। वह तुम्हें सुनेंगे और तुम्हारे व्यक्तिगत सवालों का जवाब देंगे। तुम्हारे सवालों के जवाब उनके अपने तरीके और उनके खुद के समय पर होगा और इसलिए तुम्हें उनके आवाज़ को सुनना होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके पास वापस जाने के रास्ते को बनाएं। उद्धारकर्ता ही सिर्फ रास्ता है। परमेश्वर चाहता है कि उनके पुत्र यीशु मसीह को सीखने और शांति और खुशी के महासागर को अनुभव करें जो दिव्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, मैं यहाँ एक सरल आसान तरीका है। परमेश्वर से वादा के साथ पुराने धर्म शास्त्र में पाया गया है, सभी पुरुष महिला और बच्चे इसे पा सकते हैं और अगर वो परीक्षा लेना चाहे उसे सच्चाई दिखाई देगी। पहला, तुम्हें परमेश्वर शब्द को ढूंढना है। इसका मतलब है कि पुराने और नए भविष्य वक्ताओं के धर्मशास्त्र को पढ़ना और सीखना यीशु मसीह के पुनः स्थापित सुसमाचार को लेकर। संदेह ये बुराई करने के लिए नहीं परंतु सच्चाई को जानने के लिए। अपने मन से सोच सच्चाई प्राप्त करने वाले एहसास और तैयार करने वाले उन चीजों के विषय में सोचो, भले ही विश्वास करने की इच्छा भी कि तब इस इच्छा को अपने अंदर तब तक कम करने दो जब तक कि तुम परमेश्वर की बातों को विश्वास ना करो। दूसरा, तुम्हें यह जानना सोचना निधर होकर विश्वास करने की कोशिश करो और देखना है कि कितने दयालु परमेश्वर हैं उनके बच्चों के साथ। आदम के समय से लेकर अभी तक भविष्यवक्ताओं देखने वालों और उसके गिरजाघर को बतलाने वालों के और उसके पास वापस जाने के रास्ते को प्रदान करके। तीसरा, तुम्हें अपने स्वर्ग के पिता से पूछना है उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों का संतों का के सच्चाई को तुमसे बतलाने के लिए सच्चे हृदय और अच्छी अभिलाषा से मसीह में विश्वास करके पूछो। चौथा, हमारे पास उद्धारकर्ता के द्वारा यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे वो तो वह उपदेश के विषय में जान जाएंगे कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। दूसरे शब्दों में, जब तुम सुसमाचार सिद्धांतों को की सच्चाई को जानना चाहते हो, तुम्हें उससे पहले करना होगा सुसमाचार धर्म विधि और गिरजाघर शिक्षणों को अपने जीवन में करना पड़ेगा। सच्चे मन और परमेश्वर के साथ आनंद तक के विश्वास के साथ करो। अगर तुम इन चीजों को करते हो, परमेश्वर तुम्हें वादा करता है जो अपने शब्दों को पूरा करता है वह यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा सच्चाई को बतलाएगा। वह तुम्हें ज्यादा रोशनी देगा ताकि हकर में तुम देख सको अकल्पनीय रूप से महान गवाही की विधि को बयान कर सको जो तुम्हारे शारीरिक आंखों से नहीं देख सकता। कुछ याद कहेंगे कि तरीका बहुत कठिन है या वह उस काम के फल के लायक नहीं है, परंतु मैं बतलाता हूँ कि व्यक्तिगत सुसमाचार और गिरजाघर घर की गवाही सबसे जरूरी चीज है जो तुम इस मरणशील जीवन में प्राप्त कर सकते हो। या सिर्फ एक जीवन में नहीं, तुम्हें आशीर्वाद और मदद नहीं करेगा, परंतु उसका सीधा अवसर तुम्हारे आनंद के जीवन में भी होगा। वैज्ञानिक जगत के आकार नहीं जान पा रहे थे जब तक कि औजार महान रोशनी को साथ करने की जतन नहीं थी ताकि वह पूरी सच्चाई को सुन सके। देवदूत पॉल ने आत्मिक ज्ञान को लेकर एक सरल मुश्किल दिया। परीक्षित इंसान परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं करता है, उसने कॉन्सेंस के लिखा, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें करते हैं और ना वो उन्हें जान सकते हैं क्योंकि उनकी जान आत्मिक रीति हो सकती है। दूसरे शब्दों में, अगर तुम आत्मिक सच्चाई को जानते हो, तुम्हें सही औजार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम वह आत्मिक सच्चाई को उस औजार से नहीं जान सकोगे जो उसे बता नहीं सकती। उद्धारकर्ता ने हमें हमारे दिनों में बतलाया है कि जो परमेश्वर से प्राप्त होता है वह रोशनी है, और जो वह रोशनी को प्राप्त करता है और परमेश्वर के साथ रहता है ज्यादा रोशनी को प्राप्त करता है, और वह रोशनी तेज होता है हो जाता है जब तक कि आखिरी दिन नहीं होता। जितना ज्यादा हम अपने हृदय और मन को परमेश्वर के करीब ले जाते हैं, उतने ज्यादा ही स्वर्ग रोशनी पाते हैं। और हर समय जब हम उस रोशनी की इच्छा करते हैं, सच्चाई को ढूंढते हैं और परमेश्वर को ज्यादा रोशनी पर करते हैं, अंत में चीजें जो धुंधला कर काली और अलग लगती है, उजियाला और हमेशा जाना माना लगता है। इसी तरह से अगर हम अपने आप को सुसमाचार की रोशनी से अलग करेंगे देंगे, हमारी रोशनी कम हो जाएगी। एक ही दिन या हफ्ते में नहीं, परंतु कुछ समय पर, जब तक कि हम पीछे मुड़कर देखें और जाने कि हमने क्यों यह विश्वास नहीं किया कि सुसमाचार सच्चा है। हमारे पहले का ज्ञान शायद हमें पागलपन लगे, क्योंकि जो कभी बिल्कुल साफ था वो दोबारा धुंधला, अनिश्चित और बहुत दूर लगेगा। इसी कारण पॉल बहुत विश्वासी था कि सुसमाचार उन लोगों के लिए पागलपन था जो बेकार है, परंतु जो बच गए हैं परमेश्वर के शक्ति से। यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का सभी तरह के गवाहियों के लोगों के लिए है। यह गिरजाघर के कुछ सदस्यों का गवाही सच्चाई है और बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरे अपने लिए अभी भी तलाश कर रहे हैं। गिरजाघर सभी के लिए घर है, साथ में मिलने के लिए, भले ही हमारे गवाही कितने शक्तिशाली ना हो या ऊपर हमारे गिरजाघर के दरवाजे पर कहीं नहीं लिखा है जिसमें कहता है तुम्हारी गवाही मजबूत होनी चाहिए दाखिल होने के लिए। यह गिरजाघर सिर्फ सही लोगों के लिए नहीं है, परंतु उन सभी के लिए है जो मसीह के पास आते हैं और उनके साथ परिपूर्ण होते हैं। गिरजाघर तुम्हारे और मेरी तरह के लिए लोगों के लिए है। गिरजाघर स्वागत और पोषण करने का स्थान है, ना कि अलग करने या बुराई का। यह वह स्थान है जहाँ एक दूसरे को बढ़ती मदद और बनाए रखने जाता है, जहाँ हम अपने व्यक्तिगत तौर से देवी सच्चाई को ढूंढते हैं। अंत में हम सभी मुसाफिर हैं परमेश्वर के रोशनी को खोज में, जो हम उनकी मार्ग पर चलते हैं। हम दूसरों की तुलना नहीं करते कि उनके पास कितनी रोशनी है या नहीं है, बल्कि हम सभी रोशनी को पोषण और बढ़ाई हैं जब तक कि साफ, बेहतर और सच्चा न हो जाए। हम यह मान लें कि गवाही को प्राप्त करने एक क्षण, एक घंटे या एक दिन का कार्य नहीं है, या वह नहीं है जो एक ही भर में पूरा हो जाता है। आत्मिक रोशनी को प्राप्त करना एक तक अंत तक की सफर का कार्य है। पुराने परमेश्वर की जीवित पुत्र और उनके पुनास्थापित गिरजाघर यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों का गवाही है, शायद इतनी तरह। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप अपना काम करेंगे, यह आएगा और यह यीशु के शख्स। मैं तुम्हें अपने व्यक्तिगत गवाही देता हूँ कि तुम्हें हृदय में आत्मिक सच्चाई प्राप्त होगा और तुम्हारे आत्मा को रोशनी या तुम्हारे पूरे सच्चाई के साथ आश्चर्य, खुशी और स्वर्ग की खुशांति को देगा। मैं यह अपने लिए अनुभव किया है और पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा, जिस तरह पुराने धर्मशास्त्र में वादा किया गया है, ना बोलने वाले परमेश्वर की आत्मा का होना तुम्हें आनंददायी प्रेम के गीत को गाने की इच्छा। अपने आँख को स्वर्ग को देखो और अपने आवाज में सबसे बड़े परमेश्वर की गुनगा करो, तुम्हारा रक्षा, तुम्हारा आशा, तुम्हारा पिता, उद्धारकर्ता ने वादा किया है, तुम ढूंढोगे तुम पाओगे। मैं गवाही देता हूँ कि ये सच्चाई है। अगर तुम परमेश्वर के सच्चाई को ढूंढोगे, जो अभी ढूंढली लगता है, ना दिखाई देते और दूर लगे, में प्राप्त होगा स्थापित करण और तुम्हारे हृदय के करीब होगा परमेश्वर के दया के रोशनी के द्वारा। महान आत्मिक विधित इंसान के आंखों से ना देखने वाले तुम प्राप्त करोगे। यह मेरा गवाही है कि यह आत्मिक रोशनी परमेश्वर की सभी बच्चों के तक पहुंचे। मैं तुम्हारे मन में रोशनी देगा, तुम्हारे हृदय को देख करेंगे और तुम्हारे दिनों में खुशी पड़ेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, कृपा अपने खुद के परमेश्वर के दिव्य कार्य के गवाही को ढूंढ कर और मजबूत करने में देर मत करो। रोशनी और सच्चाई के लिए करते रहो। तुम्हारे रोशनी और सच्चाई की गवाही सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मरणशील जीवन में नहीं आशीर्वाद देगा, परंतु यह तुम्हारे साथ आनंद तक जाएगा, इस दुनिया और उस दुनिया तक। इसका मैं गवाही देता हूँ और तुम्हें अपने आशीर्वाद को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Our Heavenly Father.
Yeah, हमारे स्वर्ग पिता. हम जब अभी इकट्ठा होते हैं समाप्त पे आगे सेशन पर हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमने सुना है और हमने महसूस किया है. पिता परमेश्वर हमने संगीत के लिए बहुत आभारी है और जो टेक्नोलॉजी जो हमें दिया गया है कि ये जो हमारा शब्द है ये और शब्दों में दुनिया भर में जाए. हम आभारी हैं हमारे भविष्यवक्ता जो अभी जीवित है और जो हमें मार्ग दिखाता है. हम चाहते हैं कि आप हमारे मिशनरीज के साथ हो और कि आप उनके माता पिता और पूरे परिवार के साथ हो कि आप उन पर अपना आशीष दें. अब जबकि हम आगे बढ़े पिता परमेश्वर हमें आप अभिलाषा दें कि हम जब सैक्रमेंट लें तो हम उसे और ध्यान लगाएं और फिर हम जानें कि हमें क्या करना है अपने ज़िंदगी में कि हम रोशनी को खोज करें और पवित्र आत्मा को सुने कि उसकी पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में आपके शब्द बनी रहे और कि हम आपके आज्ञा के पालन करें और आपके कार्य को आगे बढ़ाएं और हम आपके पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन.